Govinda, 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 Krishna, Govinda, 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 Hare. Krishna Murare, Prema Piyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Krishna Murare, Prema Piyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Govinda, 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 Krishna, Govinda, Govinda, Govindhare. Krishna Murare, Gopiyon ke Pyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Krishna Murare, Gopiyon ke Pyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Govinda, 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 Krishna, Govinda, Govinda, Govindhare. Murare, Neno ke Tare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Krishna Murare, Neno ke Tare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Govinda, 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 Krishna, Govinda, Govinda, Govindhare. Murare, Yashoda ke Pyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Murare, Yashoda ke Pyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Govinda, Govinda, Krishna, Govinda, Govinda, Govindhare. Krishna Murare, Manke Churare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Krishna Murare, Manke Churare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Govinda, 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 Krishna, Govinda, Govinda, Govindhare. Murare, Prema Piyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Murare, Prema Piyare, Govinda, Govinda, Govindhare.
Anum, anum, Purananum, Purananum, Aparanum, Santanum, Ghananum, Asaranum, Guruanum, Nityanum, Bodhisrupanum, Jnanasrupanum, Anandhi, 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 Anandhi. Chota roop dharan ke lena, bada roop dharan ke lena, ye siddhiyan devtaon mein thi, rakshon ke maan thi, manushyon ke maan thi, rishiyon ke vich ke maan thi, bandaron mein thi. उनका नाम है अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम इसित्व बसित्व ये योग शास्त्र के में इसका परिचय मिलता है अनिमा का मतलब है कि अणु के समान बन जाना महिमा का मतलब है कि महान रूप धारण कर लेना गरिमा माने भारी रूप धारण कर लेना लगिमा माने हल्का रूप धारण कर लेना प्राप्ति माने जिस चीज की इच्छा करे वो आकर प्राप्त हो जानी प्रकाम माने अपने मन में कामना करे वो संकल्प करे वो सिद्ध हो जाना इसी तरह माने ईश्वर के मापक सृष्टि की रचना कर देनी बचित पे चाहे जिसको आपने अधीन कर लेना आप ख्याल करके देखो वाल्मीकि रामायण के वहां तुलसीकृत रामायण में सब रामायणों में लिखा है कि हनुमान जी जब एक प्रकार से थी लंका को लांग करके गए, इतना बड़ा रूप उन्होंने धारण कर लिया कि उड़े हैं तो वृक्ष भी उनके साथ में हवा के साथ में उड़े। केवल हनुमान ही नहीं, सुरसा जो नाग माता है वो एक प्रकार से हनुमान को पकड़ लिया, तो समझे वो भी इस विद्या को जानती थी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो मच्छर के समान अणु के समान छोटा रूप धारण कर लिया, तो हनुमान जी अणु के समान भी रूप धारण कर सकते थे और महान रूप भी धारण कर सकते थे। हनुमान जी की तो बात ही क्या है, राक्षसों के माया बात देखी गई है। महाभारत के द्रोण पर्व के मां लिखा है कि 14 दिन की रात्रि के युद्ध के मां समझो कि घटोत्कच ने इतना बड़ा रूप धारण किया था कि कह रहा हूं कि सारी सेना को उसने सोचा कि मैं अपने नीचे दबा करके ही मार डालूंगा। कर्ण पा अमोघ शक्ति थी, उस अमोघ शक्ति को उसने घटोत्कच पर चला दी थी, इससे उसकी मृत्यु अवश्य हुई, किंतु उसने सोचा कि मैं मरता हुआ सबको मार डालूंगा कह रहा और कभी वो अंतर्धान हो जाता था, कभी महान रूप धारण कर लेता था। तो यह विद्या जो है अपने घटोत्कच में थी, और उस जमाने के मां समझो कि मेघनाथ आदि में थी। तो ये बतलाना है कि इस प्रकार की शक्तियां वर्तमान में देखने में नहीं आती, और भारी रूप को धारण कर लेते, हल्के रूप को धारण कर लेते। रामायण में लिखा है कि जिस समय में भरजी महाराज जो है सो श्री रामचंद्र जी से मिलने के चित्रकूट जा रहे हैं, रस्ते में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे, तो भरद्वाज ऋषि ने अपनी अपने समझो सिद्धियों के द्वारा उनकी कैसी खातिरी की, हाथियों के लिए हाथीशाल, घोड़ों के लिए घुड़सवार, एक प्रकार से मनुष्यों के लिए महल, राजाओं के लिए राजमहल बना दिए, और खाने और पीने के इतने पदार्थ समझो की रस दिए कि जो आश्रज में ये सिद्धियां जो है सो भरद्वाज ऋषि के मां भी थी, और भी ऋषियों के बीच के मां, तो ऋषियों के बीच के मां, देवताओं के बीच के मां, मनुष्यों के मां, बंदरों के बीच के मां, आजकल वो कोई भी सिद्धि देखने में नहीं आती। एक सिद्धि की बात नहीं, उस वक्त के मां सब प्रकार की उन्नतियां थी, किंतु जिस समय के मां मुसलमानों का यहाँ राज हुआ उस समय में उन्होंने हमारे जो ग्रंथ थे जिनमें ये सब बातें लिखी हुई थी सबको जला दिया। वे चाय पिया करते थे तो अग्नि के मां जलाकर उसे हमारे ग्रंथों से चाय गर्म करके पीते थे। भौतिक उन्नति की बात आपको पुराने जमाने की बतलाई, हम लोगों को एक पर जो अथर्ववेद है और भी जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं उसमें किसी में कुछ अंश मिलता है, उसके प्रभाव से जर्मन वालों ने ये समझो साइंस की विद्या उससे निकाली। जर्मन के मां हमारे वेद मिलते हैं, जर्मन के बीच में हमारे बहुत से पुस्तक मिलते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के मां नहीं मिलती, वे इस पुस्तकों की कदर करते। छठी जो उन्नति है वो सामाजिक उन्नति है, हमारा जो समाज है वो भी रसातल को जा रहा है, इसकी उन्नति करना हमारा परम कर्तव्य है। वर्तमान के बीच के मां लड़कियों की जो शादी है और इसमें जो दहेज पड़ता है वो हमारे समझो देश के लिए वो अपने खतरे की चीज है। आज हमारे लोगों के घरों के बीच के मां समझो कि 16 वर्ष की लड़की 18 वर्ष की लड़की, 20 वर्ष की लड़की मौजूद है, उसका विवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि दहेज की प्रथा के कारण। माता बहनों को भाइयों को याद रखना चाहिए कि यह बड़ी भारी खतरे की चीज है। लड़की का विवाह हमारे शास्त्रों में लिखा है रजस वाला के पूर्व ही कर देना चाहिए। लोग इस तत्व को जो नहीं समझते वे कहते हैं कि ऋषि लोग मूर्ख थे। मैं कहता हूं कि वे मूर्ख नहीं थे, उनको मूर्ख कहने वाले मूर्ख हैं। ऋषि लोग बड़े अनुभवी थे। इसका तात्पर्य क्या है कि जब तक लड़की रजस वाला नहीं होती तब तक उसके गर्भ नहीं रह सकता, और रस वाला होने के बाद साल में, दो साल में, पांच साल में चाहे जब भी गर्भ रह सकता है। तो लड़की करीब 12 वर्ष या 13 वर्ष की आयु में रस वाला हो जाती है। तो हमारे ऋषियों ने यह बात ठीक बतलाई है कि रस वाला के पहले ही उसे की शादी कर देनी चाहिए, और यदि रजो दर्शन हो गया, रस वाला हो गई, तो पहले लग्न में उसका विवाह कर देना चाहिए, अधिक समय तक उसको नहीं रखना चाहिए। और लड़की को यहाँ तक मनु जी ने आज्ञा दे दी कि तुम्हारे माता पिता 3 साल तक तुम्हारी शादी नहीं करे तो तुम अपनी इच्छा से चाहे जिसके साथ में अपना विवाह कर सकती हो। और विचार करना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपकी लड़की 13 वर्ष में रस वाला हुई और 14वें वर्ष में कुसंग के कारण उसके गर्भ रह गया। आजकल सहपाठ एक प्रकार से साथ में पढ़ना होता है लड़कियों का लड़कों का, ये प्रथा बहुत खराब है। स्कूलों में, हाई स्कूलों में समझो कि लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते हैं, आज सुधी उनका प्रेम हो जाता है और लड़की गर्भवती भी हो जाती है। ऐसी घटना पंजाब में घट चुकी है और भी कहीं घटी होगी। ये ख्याल करना चाहिए कि आपकी लड़की 15 साल की उम्र गर्भवती हो गई, शादी अभी उसकी हो ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको बाध्य होकर के 3 प्रकार के पाप में से 1 प्रकार का महान पाप करना पड़ेगा। यदि लड़की का आप गर्भ गिराओगे तो भ्रूण हत्या लगेगी, लड़का पैदा होने के बाद उसको मार डालोगे तो आपको बाल हत्या लगेगी, लड़की को घर से निकाल दोगे तो वह आकर उसे समझो कि अपने विधर्मी विजातियों के पास चली जाएगी तो तुम्हारे कुल के कलंक लगेगा, तुम्हारे जो पितृगण है वो नरक में जाएंगे। यदि लड़की बेसा होगी तो तुम्हारा और उस लड़की का, तुम्हारे पितरों का सबका पतन। 3 बात के स्वाद चौथी बात है भी, तो आप सोचो कि कितनी भारी बड़ी आपत्ति आप पर आ जाएगी। इसलिए एक प्रकार से रस वाला होने के बाद शीघ्र तिशीघ्र उसका विवाह कर देना चाहिए। तो ऋषियों ने इस बात को ध्यान में रख करके ये कानून बनाई कि रस वाला के पूर्व विवाह कर, और यदि रस वाला हो गई तो होने के साथ तुरंत विवाह कर। बड़ी आपने समझो कि खतरे की चीज है। तो वर्तमान समय के बीच के मां लड़कों से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने माता पिता से प्रार्थना करो कि आप दहेज की प्रथा का त्याग नहीं करोगे तो मैं विवाह नहीं कराऊंगा, आज ही उन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और माता पिता से सबसे ये प्रार्थना है कि आपको ये विचार करना चाहिए कि एक तो समझो कि हम लड़की तो दान लेते हैं, उसके बिना तो काम चले नहीं, और साथ में हम धन को भी दान में ले। दान लेना तो केवल ब्राह्मण का काम है, सब वर्णाश्रमों का ये धर्म नहीं है कि दान लेना। सन्यासी जो है सो भिक्षा आदि ले सके, रुपया नहीं, और ब्राह्मण जो है सो विद्वान सब कुछ ले सके, किंतु सभी कोई एक प्रकार से दान लेना सीख जाए तो कितनी बुरी बात है। और दान का जो पीसा है वो निंदनीय है ब्राह्मण के लिए भी। ब्राह्मण के लिए जग करना, जग कराना, दान लेना दान देना विद्या पढ़ाना ये छह कर्म जो है सो ब्राह्मण के लिए मनु जी ने लिखे उनके बीच में सबसे हीन जो है सो दान लेना है। उस दान के भी दो हेतु समझो कि मृत है मरा हुआ है और एक प्रकार से समझो दबाव डाल करके के आपने लेना ये तो दान नहीं है ये तो उसका खून एक प्रकार से निकाल करके पीना है। अनुमान या तो दूध बरोबर मांग लिया सो पानी और खेचा पानी रक्त बरोबर ये संतों की बाणी। लड़की वाले को बाध कर करके उनसे समझो कि ईंट करके रुपया लेना वो तो उसका खून चूसने के समान। तो माता बहनों को भाइयों को सबको विचार करना चाहिए। सबसे मेरी यह प्रार्थना है कि धैर्य की जो प्रथा हमारे देश के लिए खतरनाक जाति के लिए खतरनाक तो इसके विषय में आप उचित समझो तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि धैर्य हम नहीं लेंगे। और दो नंबर बात यह है कि एक प्रकार से थी वो देने वाला जबरन देना चाहे तो जो कुछ वो देता है उसमें से समझो कि बहुत कम लेना चाहिए। वो 1000 रुपया देवे तो उसे 100 रुपया लेना चाहिए। 100 में राजी नहीं हो तो 2 से लेना चाहिए किंतु खूब कम लेना चाहिए ये तो अवश्य ही होना चाहिए। जिसके लड़का है उससे हम ये प्रार्थना करते हैं। और भी ये ख्याल करना चाहिए कोई कोई तो लड़की घर में धन का अभाव दे करके माता पिता के दुख को दे करके आत्महत्या कर लेती है और किसी किसी के माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं उसका पाप किसको लगता है? दहेज लेने वाले को। एक तो समझो कि दहेज का पैसा बेहक का पैसा ये तो बड़ी छोटी नियत है खोटी नियत है कि दूसरे के धन के ऊपर एक प्रकार से अपने अपना हक जमाना कितनी छोटी बात है। अपने भुजा से रुपया कमा करके उससे अपना निर्वाह करना अपने लिए वो अमृत के समान है और वो अपने लिए विष के समान है। कम से कम ये तो अवश्य ही होना चाहिए कि लड़की वाला जितना देना चाहे उसे कम लेना चाहिए। और माता बहनों से भी मेरी प्रार्थना अपने ससुराल में पीर भी जावे और पीर वाले कुछ अपने आपको पोशाक देवे रुपया देवे जो भी कुछ देना चाहे उसे से भी प्रार्थना करके कम लेने की चेष्टा करनी चाहिए। वे 100 रुपया देवे तो 25 ही लेवे वे 4 पोशाक देवे तो 1 ही स्वीकार करें तो वो पोशाक अमृत के समान है वे रुपया अमृत के समान है। उस इस लोक में उसकी कीर्ति होती है मरने के बाद उसको उत्तम गति मिलती। त्याग ही प्रधान है परमात्मा की प्राप्ति में त्याग ही प्रधान है। तो और भी हमारे समझो कि समाज के मां कुरीतियां बढ़ गई है और फजूल खर्च बढ़ गया है उस फजूल खर्च का त्याग करना चाहिए। फजूल खर्च की कुरीति का त्याग करना चाहिए और बहुत सी कुरीतियां जो आपने बड़ी और बड़ी जा रही है उसे का संशोधन करना चाहिए। किसी दूसरे समय में मौका मिले तो विशेष रूप से आपको ये बातें बतलाई जा सके है। अब 1 घंटा के वहां 10 बात बतलाई जावे तो उसका सारी बतलाया जा सके है। इसी प्रकार से हमारे समझो व्यवहारिक उन्नति करनी चाहिए व्यापार के विषय की उन्नति करनी चाहिए। दुख की बात है आज हमारा समझो व्यापार जो है चोर बाजार हो गया है। हमारे इस देश के मां बहुत उच्च कोटि के समझो कि आपने व्यापार करने वाले हो गए। तुलाधर वैश्य जिसका नाम आपने सुना होगा उसका कितना पवित्र व्यवहार था। उस पवित्र व्यवहार के प्रभाव से थी वह भगवान के परम धाम को चला गया। वो व्यापार के मां झूठ कपड़े चोरी बेईमानी नहीं करता था और सबको सम समझता था स्वार्थ का त्याग करके अपना कर्तव्य समझ करके व्यवहार करता था। इस कारण से थी उसकी अपने उत्तम से उत्तम गति हुई। पद्म पुराण में ये कथा आती है और ये कथा समझो कि महाभारत में भी आती है दूसरे प्रकार से। उसके जीवन में कई घटना बीती है, एक घटना की बात महाभारत में आती है, एक की पद्म पुराण में आती है। सभी घटनाएं थोड़ी एक प्रकार से लिखी जा सकती है। तो उसका व्यवहार बड़ा पवित्र व्यवहार था। भगवान उसके घर पर नित वास करते थे और उसकी वाणी शुद्ध थी। जाजली ऋषि के मस्तक पर जिन पक्षियों ने गुस्साला घाला था, वे पक्षी आकाश में उड़ते जा रहे थे और कहा, हे जाजले, इन्हीं पक्षियों ने तुम्हारे सिर पर गुस्साला घाला था, इनको तुम बुलाओ, अभी तुम्हारे मस्तक पर आवे। जाजली ने बुलाया और वे सिर पर आ गए और पक्षियों के द्वारा फिर उसने समझो कि जाजली को उपदेश दिलाया। जाजली देकर के आश्चर्य में पड़ गया कि देखो इसकी बात को पक्षी भी मानते हैं, ये एक प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि का तपस्वी है, गृहस्थ में रह करके बढ़िया हो करके। तो हमारे इस देश में ऐसे ऐसे हो, व्यापार हमारा समझो कि नष्ट होता जा रहा है, लोग उसको चोर बाजार कहने लगे। कहने का उनका, कहने वालों का कोई दोष नहीं है, व्यापार के मां झूठ कपट चोरी बेईमानी जगहबाजी जो है, ये चोर बाजार नहीं तो क्या है? सेल टिकट की चोरी, इनकम की चोरी, एक क्या एक प्रकार से थी। जितनी जो टिक्स सरकार ने लगाई है, अधिकांश सभी टिक्सों में लोग चोरी करते हैं। यद्यपि सरकार ने इतना जो कर लगा दिया, ये अनुचित बात है। सरकार के कर को हम नहीं माने तो उसमें हमारे कोई दोष नहीं है, किंतु दोष इस बात का है कि जो ईश्वर की कानून का हम समझो कि ईश्वर की कानून को हम नहीं मानते, उसको ठुकराते, ये दोष की बात है। झूठ बोलना, चोरी करना, बही खाता में झूठा लिखना, ये सब एक प्रकार से ईश्वर की कानून के विरुद्ध है। तो हमारा व्यापार सच्चाई का होना चाहिए। व्यापार जो है एक प्रकार से उच्च कोटि का होना चाहिए, तोल में नाप में संख्या में किसी की चीज अधिक नहीं लेना और कम नहीं देना। व्यापार के मां जो हम नमूना दिखावे वही माल देना चाहिए, बढ़िया नमूना दिखाकर घटिया माल नहीं देना चाहिए और एक बढ़िया माल में खराब चीज मिला करके नहीं बेचनी चाहिए। और पाट है, रुई है या ऊन है, उसमें पानी छिड़ करके उसको बोझा नहीं बढ़ाना चाहिए। सुपारी के बीच के मां पानी छिड़ के बोझा नहीं बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो है चोर बाजार है, इसका सुधार करना चाहिए, नहीं तो इससे समझो कि बड़े खतरे की बात है। बुद्धि तो नष्ट होती है, उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है, ये लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। न्याय से उपार्जन के बाद जो द्रव है उसे अंतकरण की शुद्धि होती है, दूसरे को दे दिया जावे तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती, उसका भोजन करने से दूसरे की आत्मा पवित्र हो जाती है और पापी का अन्न खाने से उसकी बुद्धि पापमय हो जाती है। सुना जाता है भीष्म पिता में दुर्योधन का अन्न खाया, उससे उनकी बुद्धि के ऊपर अपने ऐसा पर्दा पड़ गया कि उसको धर्म का ज्ञान नहीं रहा। द्रौपदी सभा के बीच में पूछती है कि भीष्म पितामह से कि मैं हारी गई या नहीं हारी गई। भीष्म जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, महाराज युधिष्ठिर से जाकर तुम पूछो। तो पापी का अन्न खाने से ती बुद्धि पापमय हो जाती है और धर्मात्मा का अन्न खाने से ती बुद्धि धार्मिक हो जाती। तो ये आपको मैंने व्यवहार की बात थोड़ी बतला दी। इसी प्रकार से हम लोगों का नैतिक पतन हो गया है तो एक प्रकार से उसका भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। नैतिक पतन का यह अभिप्राय है कि नीति से हम गिर गए। हाकिम न्याय करता है तो जहां अधिक घूस मिल जाती है उसकी पक्ष ले लेता है, रेलवे वालों से मिलकर के हम भेजते हैं समझो कि गेहूं और चावल और नाम लिखाते हैं दाल का, उज्जैन में भी समझो कि अधिक माल को कम लिखा देते हैं, यहाँ के क्षेत्र मार्ग से मिल जाते और जहाँ माल छूटता है वहाँ के क्षेत्र मार्ग से मिल जाते हैं और सब मिलकर के अपने समझो कि अनुचित लाभ उठाते। हम सफर करते हैं रेल के बीच के माँ, तो उस समय के बीच के माँ हमारे पास में जो टिकट जो आपने सेकंड क्लास का है और फर्स्ट में बैठ गए और टिकट कलेक्टर टिकट जिचाई करने के लिए आए तो पाखाने में बढ़ गए, वो बेचारा दे करके चला गया। स्टेशन के ऊपर उतरते हैं तो मुठियों को कहते हैं उजन ज्यादा है तुम दूसरे रास्ते से ले जाओ, तुमको एक रुपया इनाम दे दें। हर एक प्रकार से थी, हम एक प्रकार से नीति का त्याग कर देती। रेल में चलते हैं सुन जो चार सीट रिजर्व है और उसमें दो सीट खाली है डब्बे में, हम भीतर से बंद कर लेते हैं, बाहर से लोग पुकारते रहते हैं, हम सुन जो जागते हुए ही सो जाते, वो हैरान होकर अपने चले जाता है। तो ये नीति नहीं है, ये कायदा नहीं है। जो न्याय का त्याग है वो अनीति है और न्याय युक्त करना ही नीति है। तो हम लोग नीति के बीच के वहां फिसल गए हैं, हम लोगों का दर्जा एकदम गिर गया है, इसलिए हमको संभालना चाहिए। हम पंचायती करने के वास्ते पंच बनते हैं, उसमें भी एक की पक्ष कर लेते हैं, तो ये भी अनीति है। नीति जिसका नाम न्याय है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। छोटी सी एक कहानी है, एक समय की बात है, प्रह्लाद का पुत्र विरोचन और अंगिरा ऋषि का पुत्र जो सुधन्वा केशिनी नाम की एक स्त्री को लेकर इनका झगड़ा हो गया। वो कहता इसके साथ मैं ब्याह करूंगा, वो कहता मैं करूंगा। आखिर के बीच में ये बात तय हुई, वो कह मैं श्रेष्ठ, वो कह मैं श्रेष्ठ, अरवा कन्या जो है उसको ही ब्याहना चाहती है जो श्रेष्ठ हो। तो उन्होंने प्राणों की बाजी उस पर रख दी कि यदि मैं श्रेष्ठ हूं तो या कन्या मेरी और तुम्हारे प्राण मेरे, और तू श्रेष्ठ है तो मेरे प्राणों पर इस कन्या पर तुम्हारा अधिकार रहा। बोले चलो न्याय करा लो। तो न्याय कराने के वास्ते अंगिरा का पुत्र जो है उसने कहा कि तुम्हारे पिता से चलकर न्याय करा लो। तुम्हारा पिता जो प्रहलाद है बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, उस पास न्याय कराने के लिए आए। प्रहलाद समझ गया कि मेरे लड़के ने बड़ी भारी गलती की। वे कश्यप जी के पास में गए कि इस प्रकार का फैसला मेरे पास आया है, यदि मैं ठीक न्याय करता हूं तब तो मेरे पुत्र की हिंसा होती है, मेरे पुत्र के प्राण जाते हैं, और यदि मैं अन्याय करता हूं तो पाप का भागी हूं, इसलिए ऐसा कोई मार्ग बताओ कि जिससे मेरे पुत्र के प्राण भी रह जावें और एक प्रकार से थी समझो कि न्याय का न्याय हो जाए, धर्म की भी हानि न हो। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई युक्ति हमारे पास नहीं है। तुम्हारे को पुत्र प्यारा है तो धर्म को छोड़ दो, और धर्म प्यारा है तो पुत्र को छोड़ दो। आखिर के न्यायालय में बैठ करके न्याय करते हैं प्रहलाद। सुधन्वा मेरे पुत्र विरोचन से तुम श्रेष्ठ हो, इतना ही नहीं इसकी मां से तुम्हारी मां श्रेष्ठ है और मुझसे तुम्हारा पिता श्रेष्ठ। मेरे ऊपर विश्वास किया, प्राणों की बाजी, वो अच्छे माता पिता से पैदा हुआ है, जो प्रतिपक्ष के पिता के पास में प्राणों की जांबाजी वहां लाकर न्याय कराना, तो ये न्याय था उस समय के बीच के बाद। तो धनवा खुश हो गया कि प्रहलाद धन्य है तुम्हारे, तुम्हारे पुत्र का जो प्राण मेरे अधिकार में है उस प्राणों को मैं तुम्हारी भेंट दे देता हूं, छोड़ देता हूं। उसके पुत्र के प्राण भी बच गए और धर्म भी बच गया। उसने धर्म की पक्ष करी और पुत्र वो एकदम त्याग दिया। तो इस प्रकार से एक इस समय के बीच के मां वो बात आजकल बहुत कम है, हम लोग इससे बहुत गिर गए हैं। तो नीति की तरफ ख्याल करके हमको नैतिक उन्नति करनी चाहिए। इसी प्रकार से धार्मिक उन्नति, धार्मिक के विषय में बहुत सी बातें हैं, किंतु सार्वजनिक जो धर्म है उसके लिए मैं आपको एक श्लोक बता देता हूं। मनुस्मृति की छठी अध्याय में लिखा है, द्वितीय समा दमो सिंह सोच निंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमय क्रोधो दशकंग धर्म लक्षणम। द्वितीय माना धैर्य रखना, दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना, उसका बदला न चाहना। द्वितीय क्षमा दम माने एक प्रकार से थी अपने मन को वश में करना, चोरी डकैती नहीं करना। द्वितीय क्षमा दो से शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, शौचाचार और सदाचार बाहर की पवित्रता, अंतकरण की शुद्धि भीतर की पवित्रता। द्वितीय क्षमा दमो सेन सोच में इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का दमन, अपने इंद्रियों को काबू में करना। धी माने सात्विक बुद्धि बनाना, बुद्धि को सात्विक बनाना।